योजनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
ओम शांति। मेरा शरीर का नाम लक्ष्मण है। दिल्ली में मैं मालवीय नगर सेवा केंद्र में रहता हूँ। आज से लगभग 50 वर्ष पहले बाबा ने मुझे आत्मा को मिलकर मेरे जीवन को पलटा दिया। बाबा आए हैं सारे विश्व को पलटाने के लिए और हम आत्माओं को जो भटकती रहती थी जैसे समुद्र के अंदर नैयाएं होती हैं, लेकिन उनको चलाने वाला ना हो तो कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं, कोई ठिकाना भी नहीं उनका। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते थे लेकिन पता तो था नहीं कि भगवान हमको ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, भगवान कौन है और किस रूप में मिलेगा, ये गीतों में सुनते थे कि किसी रूप में मिलेगा, गुप्त रूप में मिलेगा। लेकिन वो गुप्त रूप कौन सा होगा, ये जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हम बच्चों को वो पहचान दी तब मालूम पड़ा कि सचमुच भगवान भी हम बच्चों को ढूंढते थे। उनको तो पता ही है कौन बच्चा कहाँ है, हमें ही पता नहीं था कि भगवान कहाँ है। सोचते थे हरिद्वार में जाएंगे, बनारस जाएंगे, तीर्थों पे जाएंगे, चार धाम की यात्रा करेंगे तो हमारी जो मनोकामना है भगवान को प्राप्त करने की वो पूरी होगी। ये पता नहीं था कि भगवान के बनने के बाद हमको क्या मिलेगा। जैसे बच्चा छोटा पैदा होता है तो उसको तो पता ही नहीं है कुछ कि उसके बाप के पास क्या है, और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खुलती हैं, जैसे जैसे हमें ये ज्ञान का नेत्र मिलता है उसमें रोशनी आती जाती है, जितना हम आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है तब पता लगता है कि भगवान हम बच्चों को कुछ देने के लिए आए हैं, हमारी झोली भरने के लिए आए हैं। सत्यनारायण की कथा मैं भी करता था, बहुत लोग करते हैं और बाद में अपना पलड़ा जो है वो ऐसे खोल के भगवान से वरदान मांगते हैं कि हमारी झोली भर दो। तो आज से 50 वर्ष पहले 1958 की बात है, यानी 1958 और अब है 2008। इसी स्थान के ऊपर इसी हॉल के अंदर ब्रह्मा बाबा यहाँ बैठते थे और मातोश्वरी यहाँ बैठती थी। यही मेरे ख्याल में यही होंगी, संघासन में यही होगा और बाबा इस दरवाजे से आते थे साकार में। पूरे 7 बजे की अगर क्लास है तो बाबा 2 मिनट पहले आते थे और आकर यहाँ बैठते थे। मामा 10 मिनट और पहले आती थी, सब योग में बैठते थे, मामा दृष्टि देती थी और थोड़ा बहुत जो धारणा की बातें हैं कि बाबा क्या हम बच्चों से चाहते हैं, कैसे हमको ये ज्ञान रत्नों की वैल्यू होनी चाहिए, बाबा कौन है। भगवान खुद हम बच्चों के पास यहाँ पर आए हुए हैं। तो जब बाबा यहाँ एंटर करते थे तो मामा मातेश्वरी सरस्वती बोलना बंद करती थी, बाबा के सामने नहीं बोलती थी। बाबा के प्रति इतना स्नेह, इतना सम्मान उनके दिल में था, जैसे एक बच्ची के अंदर बाप के लिए प्यार भी होता है, सम्मान भी होता है। इस दुनिया में भी देख रहे हैं, लौकिक के अंदर बच्चे के अंदर बाप के लिए ज्यादा प्यार है और उसे संभाल भी करती है, उसे कहना भी मानती है। और आप देख भी रहे हैं इस दुनिया की क्या हालत है, बच्चे तो बाप माँ को पूछते नहीं, लेकिन बच्ची जो है फिर भी सेवा करती है। और अगर ब्रह्मा कुमारी बन जाए वो बच्ची, तो माँ बाप का तो बागे खुल जाता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बनकर सेवा तो करती है दूसरी आत्माओं की, लेकिन अपने माँ बाप का भी ख्याल रख सकती है, जरूरत पड़ने पे उनकी मदद कर सकती है, कम से कम उनको ज्ञान की बातें सुनाकर हिम्मत और शक्ति बढ़ती है उनके जीवन के अंदर। और बच्चे का जीवन बदलता देखकर माँ बाप का जीवन अवश्य ही बदलता है, क्योंकि आप जानते हैं और देख भी रहे हैं यहाँ पर इस यज्ञ के अंदर। तो मातेश्वरी जिनको मम्मा कहते थे और ब्रह्मा बाबा जिनको बाबा कहते थे, और आयु भी बाबा की जब हम आए लगभग 80 वर्ष की थी, तो इतनी आयु वाला व्यक्ति उनको आप बाबा कहेंगे अच्छा लगता है, प्यार भी जगता है। और वो आयु ऐसी है जिसके अंदर, जिस आयु में आप शरीर से न्यारे और सबके प्रति कल्याण की भावना रखने वाले बन जाते हैं। इस समय भी देखते हैं, मैं देखता हूँ अपनी आयु 75 वर्ष हो गई, तो मेरी जो भावनाएं हैं, मेरे जो विचार हैं, मेरा जो व्यवहार है सबके प्रति पहले से बहुत अच्छा, और सबके प्रति छोटे होने कारण, दूसरे छोटे होने कारण क्या फीलिंग आती है, कल्याण की, उनके प्रति स्नेह की, उनको सम्मान देने की। जैसे लौकिक में बाप अपने बच्चों को सम्मान देता है, प्यार देता है, प्यार के साथ साथ सम्मान, तो बाबा ने हमें सिखलाया, ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि जब से हम बाबा के बने तब से यही सिखलाया कि बच्चे तुमको कैसा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़े आदमियों को कम बोलना चाहिए, और जो कुछ भी बोले उसके अंदर कोई सेंस होना चाहिए, फालतू बात बड़े आदमी नहीं करते। बड़े आदमी जो है वैसे भी आप देखते हैं बाबा कहते डायरी रखते हैं, तो बाबा साकार में हम बच्चों को बताते थे, बच्चे तुम किसके बच्चे हो, बड़े से बड़ा जो बाप है शिव बाबा, अब तुम बच्चों को ब्रह्मा के मुख द्वारा सिखला रहा है, लेकिन सिखलाने वाला तो बाबा है, और शिव बाबा इस ब्रह्मा के तन में आकर इनको भी सिखलाते हैं, इनके तन में आकर मुख से जब बोलते हैं तो ब्रह्मा भी अपने कानों से सुनता है। तो ये जो इतना बड़ा बाप, जिसको जब हम पहचान जाते हैं तो उसकी हर एक बात बहुत अच्छी लगती है। पहली बात तो बाबा जो कुछ बतलाते हैं 100% पूरा सत्य है, भगवान को सत्य कहते हैं तो कैसे माने, जरूर उनके वचन भी सत्य होंगे, उनके व्यवहार भी सत्य होगा, सच्चा होगा, झूठा नहीं। आजकल तो मनुष्य कुछ बोलते हैं, करते कुछ हैं, लेकिन हम बच्चों ने देखा ब्रह्मा बाबा के व्यवहार से कि जिसको अपना बच्चा कह दिया एक बार, उसके प्रति बाबा का वो संबंध सदैव बना रहा, और दृष्टि क्या रही कि मेरे बच्चे हैं। जैसे बच्चों के अवगुण नहीं देखे जाते, प्यारे लगते हैं ना बच्चे, इसलिए अपने बच्चों के अवगुण क्या देखेंगे, और वैसे भी समझते हैं बच्चे हैं, सीख जाएंगे, तो आप सिखाना चाहते हैं केवल, कभी डांटना नहीं चाहते। लेकिन इस समय क्योंकि मनुष्य देव मान में है तो क्रोध होने कारण वो डांट लगाते हैं, बच्चे रोते भी हैं। बाबा यहाँ पर इस प्रकार से सिखलाते थे, तो रोने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि बाबा जब सिखलाते थे सदैव एक एक शब्द के अंदर कल्याण की भावना समाई हुई थी। इसलिए ये श्रीमद् का गायन है। तो बाबा को जब हम पहले मिले, क्योंकि पहले तो धारणा चाहिए पवित्रता की। अभी पता है आपको कि सेंटर्स पे पहले स्टडी कराते हैं, फिर कुछ समय क्लास जब तक ना करे और उसको धारणाओं का पता ना लगे, खान पान की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, और रोज जब तक क्लास ना करे तो उसको मधुबन आने के लिए स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। हमारे समय पर तो ऐसा नियम था ही, और क्योंकि जब हम कुमार होते हैं तो अगर आप 6 महीने भी अच्छी तरह से क्लास करते हैं तो आपको अलग किया जाता है, भले जाओ, बाबा तो खुश होंगे बच्चों को मिलकर, क्योंकि कुमार जो है ही पवित्र, कुमारी भी पवित्र है, तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। और आप देखते भी हैं कि जीवन में जब टर्निंग प्वाइंट आता है, जब जो भविष्य में बनना होता है एक व्यक्ति को, बचपन से ही उसके जीवन के अंदर वैसा मोड़ आता है, माने उसकी लाइफ उस प्रकार से टर्न करती है। तो देखिए, छोटी छोटी बच्चियां हमारे बेट पे तो छोटी होंगी एज में, वैसे ज्ञान में बहुत बड़ी है हमसे। क्यों? जितना ज्ञान सुनाती है तो ज्ञान गंगा बन गई। बाबा ने खुद उनको टाइटल दिया है ज्ञान गंगा का, और है भी सत्य बात, जो ज्ञान सुनाएगा उसको उतना ही बुद्धि के अंदर रखना पड़ेगा। किसी टाइम भी कोई व्यक्ति आए तो आपने उसको ज्ञान सुनाना है, तो फिर तो पॉइंट तो होनी चाहिए। इसलिए हमसे बहुत आगे हैं, और यही गायन है कि भगवान ने ज्ञान का कलश माताओं के सिर के ऊपर रखा। वैसे स्थूल कलश नहीं है, लेकिन बुद्धि भी यहाँ पर है, आत्मा भी यहीं पर है, तो बुद्धि की तिजोरी में भगवान ये ज्ञान का धन उसको भरकर ऐसा बना देते हैं जो जिसके पास भी ज्ञान का धन है वो माला माल समझता अपने आप को। अभी भी अगर हमारे पास खुशी का खजाना है तो उसका आधार हमारे पास कितना ज्ञान का धन है। बाकी धन होते हुए भी आप उसका सहारा नहीं लेते, क्योंकि आपने सब कुछ त्याग दिया, बाबा को दे दिया, अपना जीवन दे दिया, अपना तन मन और धन। जब हम बाबा को देते हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारा बाबा के ऊपर अधिकार है। और वैसे भी अगर बाप का कहना मानना है तो फिर अपनी बुद्धि को तो नहीं चलाना पड़ेगा, जैसे बाप कहे वो करना। कितनी बच्चे को खुशी होगी, कितना उसका फायदा होगा, और कितनी खुशी बाप को होगी। जो कहने वाला कहना मानने वाला बच्चा होता है तो बाप को बहुत प्यारा लगता है। तो हम बच्चे भी यथाशक्ति बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा हमें दिखाई नहीं पड़ते कि आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर उनकी आशीर्वाद रहती है सदैव, और बाबा हमारा साथ देते हैं। जैसे बच्चा एक बाप का हाथ पकड़ के चलता है, जब हम अपने आप को देहाभिमान को भूल कर अपने आप को आत्मा बच्चा समझते हैं, शरीर को भी भूल जाइए, अपने आप को छोटा बच्चा समझिए, तो आप बाबा का हाथ अच्छी तरह पकड़ के चलेंगे। और जैसे बच्चा बाप का हाथ पकड़ के छलांगे लगा के जाता है, खुशी के अंदर उसके पांव जो हैं वो चलना चाहते हैं, लेकिन बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए वो चलता तो उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से बाप चलाए, लेकिन चलना जल्दी जाता है। तो ये बाबा की जो प्रैक्टिकल व्यवहार के अंदर हमने जीवन देखी, उसमें हमें दिखाई पड़ा कि बाप क्या होता है। वैसे लौकिक के अंदर हर एक का माँ बाप भी होते हैं, लेकिन मेरे लौकिक जीवन के अंदर जब मैं 9 वर्ष का था तब हमारे लौकिक बाप ने शरीर छोड़ दिया, तो व्यक्ति को दुख तो महसूस होता है, बच्चे को, जिस बच्चे का माँ या बाप न हो तो कैसे लगेगा उसको। तो बाबा के जब हम बने तो बहुत समय का जो हमने दुख का मन के अंदर अनुभव किया था, बाबा का बनने के बाद हमको ऐसे महसूस हुआ कि हमको सच्चा बाप मिल गया। इसी प्रकार से आप देखते हैं माताएं जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, जब बाप यहाँ पर आते हैं और उनको उनका प्यार मिलता है बाप का, और समझती हैं जैसे बाप रक्षा करता है, तो रक्षक को आप पति भी कह सकते हैं। नारी जो है पति को अपना रक्षक समझती, अब रक्षक नहीं है लेकिन भगवान जो है उनको पति के रूप में भी याद करते हैं और पिता के रूप में भी याद करते हैं। तो ये दोनों मुख्य पाठ बाबा के साकार रूप के अंदर हमें दिखाई पड़े। दूसरी बात, जैसे बच्चे को आप प्यार करते हैं, छोटा बच्चा आपसे छोटा हो तो आपसे आके वो आपके पास बैठेगा, हाँ, आप उसको उसका हाथ पकड़ेंगे, उसको गले भी लगाएंगे छोटे बच्चे को, क्यों? ये प्यार की निशानी है। लेकिन इस समय प्यार जो है उसका रूप बदल गया। जब हमारे टाइम में जब हम आते थे बाबा से मिलते साकार में, बाबा, ये बाबा का ये फोटो देखिए जहाँ बाबा खड़े हैं, तो ये दूसरे जो आधे फोटो हैं वो पूरा नहीं दिखलाते बाबा का चेहरा, लेकिन जो ये बाबा का रूप आप देखते हैं तीसरा नंबर फोटो और चेहरे में ये, तो वो बाबा यहाँ पर बैठ के हम बच्चों को मुरली सुनाते थे। मुरली कोई पढ़ते नहीं थे, जैसे दादियां या कोई बहनें पढ़ती हैं, पढ़ के सुनाती हैं, लेकिन बाबा आते ही एक गीत बजता था। जैसे गीत के ऊपर आज जो वाणी सुनी होगी आपने, कितने खुश नसीब हैं हम, कितना खुश नसीब है जिसको जिसके जिसको तुम करीब हो, मतलब यही था कि कितने खुश नसीब हम बच्चे हैं। तो ऐसा जब गीत बजता था, ये गीत बाबा के टाइम के हैं, ये सिनेमा के गीत हैं, लेकिन बाबा कहते थे सिनेमा वालों को तो इसका वैल्यू नहीं है, वो शारीरिक प्यार की बात करते हैं, लेकिन जब परमात्मा अपने बच्चों को मिलते हैं इतना समय से बिछड़ने के बाद, तो उनको महसूस होता है कि हम कितने खुश नसीब हैं। अभी भी ऐसे ही महसूस करते हैं हम कितने खुश नसीब हैं। सारी दुनिया में तो अंधकार छाया हुआ है, एक दूसरे को वो प्यार और सम्मान देने के बदले एक दूसरे को काटते हैं, घृणा करते हैं। लौकिक में बच्चा बाप के नजदीक नहीं जाना चाहता, उसको डर लगा रहता, बाप भी अच्छा नहीं लगता, न बाप को बच्चा अच्छा लगता क्योंकि उसके अवगुण देखता है, ये भूल जाता है कि मेरा बच्चा है, सिर्फ मोह के वश जो है वो उसको अपना बच्चा समझता है। तो मोह के अंदर तो दुख ही है, जहां मोह होगा तो आपके कोई गलती करेगा तो आप उसको डांटेंगे, वास्तव में डांटने की तो बात ही नहीं है, अगर बच्चा है तो उसको सिखाना है, लेकिन वो बच्चा बाप से दुखी और बाप बच्चे से दुखी, ये दुनिया की हालत हो गई 50 वर्ष के अंदर, तो पता नहीं कितनी गिरावट आ गई संबंधों के अंदर, जो मनुष्य को दूसरा मनुष्य अच्छा ही नहीं लगता, सत्य बात कह रहा हूं मैं, मेरा अनुभव है ये हा? और ईमानदारी के बाद बाबा के टाइम में जो हम जिस जीवन में थे, माने जो कुछ कहते थे वो करते थे, उस टाइम में कोई एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है, जबान से आपने जो कहा, किसने बोला भाई मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए इतना पैसा दे दो, तो आप दे देंगे, उसको लिखवाएंगे नहीं, और ये विश्वास रखेंगे कि वो जो कह रहा है भाई एक साल में दूंगा, हर 2 महीने के बाद दूंगा, हर महीने इतना दूंगा, वो देते थे। अब लिखवाने के बाद भी नहीं देते तो क्या फायदा हुआ? तो दुनिया की गिरावट कितनी हो गई 50 वर्ष के अंदर, बड़े बड़े लोग अमीर अमीर बनते ही झूठ से हैं, पाप से, तो उनको आप और हम समझते हैं वो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो वास्तव में है बड़ा नहीं। बाबा ने बोला कि बच्चे तुम उसको देह की नजर से देखते हो, आत्मिक नजर से देखो ये तो बहुत गरीब है, भगवान से तो बहुत दूर है। हम बच्चे अगर गरीब भी हों, अगर हम आत्मा सच्चे हैं पवित्र हैं तो बाबा के बहुत समीप हैं। बाबा आपको अंदर ही अंदर प्यार का अनुभव कराता है, जितना आप बाबा से प्यार करते हैं उससे ज्यादा बाबा आपको प्यार करता है, सिर्फ कमी है तो हमारी अपनी। तो मैं ये बतला रहा था, तो जब मेरी 25 वर्ष की आयु थी मैं सर्विस करता था, क्योंकि लगभग 20-21 वर्ष के बाद व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, गवर्नमेंट सर्विस करता था, हमारा सारा ही परिवार लगभग एक ही टाइम पे बाबा का बन गया, तो हमारे लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं हुई। हमारी माता जी थी, हमारी तीन बहनें थी, सभी बाबा के बन गए। तो वैसे तो परिवार वाले आपको विघ्न डालते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता घर में से एक व्यक्ति इधर बाबा की तरफ जाए, फिर तो ये हमारा कहना भी नहीं मानेगा, और उसको वो तो कहना मानेगा जो उनको बाबा बोलेगा, वही कहना मानेगा। और धारणाएं वो होंगी जो दुनिया से बिल्कुल न्यारी है, हाँ, समाज से तो अलग है ना अपनी धारणाएं, खान पान की धारणाएं हैं, जो हम बातचीत करते हैं वो भी बिल्कुल फर्क होती है, हमारा व्यवहार भी चेंज हो जाता है। तो दुनिया वालों को तो लगता है डर, लेकिन जब आपका परिवार आपका साथ देता है तो आप जैसा खुश नसीब कोई नहीं। बाबा भी खुद कहते थे कि जो परिवार के साथ आते हैं, वैसे कहीं एक फूल होता है कहीं दो, जहाँ गुलदस्ता ही सारा साथ में हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसे परिवार जहाँ पर सारे ही इकट्ठे बाबा के बनते थे, बाबा को बहुत अच्छे लगते थे, बाप उनके ऊपर अच्छी तरह से दृष्टि रखते थे कि ये बच्चे होनहार हैं, आगे चल के जब लोग देखेंगे तो हम कह सकते हैं भाई देखो ये छोड़ने की बात नहीं है, ये परिवार में रह के भी चल सकते हैं, सारे परिवार में रह के भी खुश रह सकते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा तो खत्म ही हो जाता है, अभी भी खत्म हो जाता है, जिसको जो चाहिए जिसका जो अधिकार है वो तो लेगा ही, और जिसकी जो चीज है उसको मिलनी भी चाहिए, चाहे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे व न्याय के आधार पर। अगर किसी को कोई चीज मिलती है, कोई साहूकार बनता है, किसी को कुछ मिलता है, कोई गरीब बनता है, तो हम तो क्या कहते हैं, बाबा ने बता दिया बच्चे अपने कर्मों के आधार पे, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाते हैं जो अभी ही हमारी तकदीर चेंज होना शुरू करती है। हरेक जो बच्चा जब आया था यहाँ पर गरीब था, क्योंकि आज से इतने वर्ष पहले की बात है, जबकि ऐसा जमाना था कि ऐसे या बाहरी रूप से शाहूकारी जैसे आप देखते हैं लाखों करोड़ों रुपए के मकान है, जिसमें लोग रहते हैं, इतनी मोटरें गाड़ी हैं, इतना हवाई जहाज में सफर करते हैं लोग, इतना ठाट बाट से रहते हैं, वो समय तो नहीं था, गरीब थे लोग, भारत भी बहुत गरीब था, देखने में अभी अमीर है, वास्तव में बाबा की नजरों में तो भारत बहुत गरीब है, क्योंकि जो इतना ऊंचा तकदीरवान थी आत्माएं तो बिल्कुल कंगाल बन गई, भिखारी, सुख शांति का नाम ही नहीं रहा। जहाँ पर घर घर के अंदर चैन होता था, घर घर के अंदर आत्माओं की ज्योति जगी हुई थी, और अब क्या है, अंधकार है। तो बाबा कहते हैं तुम बेहद की दृष्टि से देखो, तो हम बच्चों की दृष्टि भी बाबा बेहद की बनाते जा रहे हैं, जब बाबा की मुरली सुनते हैं हम लोग, या जब पहले सुनते थे एक एक बात बाबा की सच्ची लगती, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं जो भी ज्ञान की बात बाबा कहते हैं वो आपके वो दिल पर छप जाती है, और यहाँ तक कि आधी मुरली जो बाबा ने चलाई है आधी आप रिपीट कर सकते हैं, 8-10-15 पॉइंट, किससे पूछा जाए आप पॉइंट सुनाओ, आप सुनाओ, आप सुनाओ, आप सुनाओ, तो सारे पॉइंट निकल आएंगे। और कोई बच्चे तो ऐसे जो 4 पॉइंट भी सुना देंगे, मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ। तो जब हम छोटे हैं तो कितना हमको लाभ होता है भगवान से, इसलिए अगर छोटे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी लॉटरी है, अगर बड़े हैं हमारे लिए ये लॉटरी है कि इस आयु के अंदर जबकि भगवान संगम युग पे आए हैं उनकी दृष्टि मेरे ऊपर भी पड़ गई। नहीं तो अगर मैं शरीर छोड़ जाता या बीमार होता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बीमार है नहीं, जो भी मुरली सुनते हैं बाबा के जो भी आते हैं वो बीमार नहीं है, वो अच्छी तरह बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको बाबा की पहचान है, कमाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर आता है वो कमाई करके ही जाता है, खाली नहीं जाता यहाँ से, लेकिन वो आत्मा जो है वो भरपूर होके जाती है। ऐसा अनुभव पहले से लेकर अभी तक बाबा के घर में जो आते हैं, क्योंकि किस बाबा का घर है ये, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का घर है ये, जो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ बनता है और स्थापना के कार्य के निमित्त बनता है, वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो यहाँ पर आती है, जो नीचे से भी आती है यहाँ फेरी पहनने के लिए, जो विजिटर्स भी आते हैं वो भी लकी हैं, कि बाबा घर में आते हैं जहाँ बाबा कमरे में जाते हैं, यहाँ आते हैं जहाँ बाबा क्लास कराते थे, और साथ में ब्रह्मा भोजन खाते हैं, दूसरी जगह भी भोजन मिलता होगा आश्रमों में, लेकिन जो ब्रह्मा भोजन की महिमा है वो तो उन भोजन की तो महिमा है ही नहीं। कहीं ऐसा वैष्णव भोजन बनता ही नहीं, और बनाने वाले कौन है? हर एक चीज जो यहाँ पे बनती है वो प्रसाद है, इसलिए बाबा खुद कहते हैं साकार में, बच्चे जितना खाना है उतना ही लो, इसका एक कणा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तुमको ब्रह्मा भोजन की वैल्यू नहीं है, ये बाबा ने सिखलाया है। अभी भी जो दादियां हमें बतला रही हैं, साकार बाबा ने सिखलाया उनको और उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, इसलिए हमें भी वो बतलाती हैं कि बाबा समान बनना है अगर तो जो बाबा के ऊंच विचार और शादी जीवन वैसी। बाबा क्या पहनते थे? कुर्ता और धोती पहनते थे, बनियान एक पहनते नीचे, और ठंड के अंदर एक शॉल ओढ़ के आते थे, यहाँ पर ठंड पड़ेगी तो ऐसे नहीं कोट पहन के आते थे, कंबल पहन के आते थे, या सन्यासी लोग और ब्रह्मा बाबा में तो रात और दिन का फर्क, 80 वर्ष की आयु के अंदर भी इतना फिट स्ट्रेट सीधा चलते थे, चश्मा नहीं पहनते थे, हाथ में लाठी उठाने की आवश्यकता नहीं है, किसी बहन या भाई का हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं। वैसे हमारे ब्रह्मा बाबा जिन्होंने 60 वर्ष के अंदर जब बाबा ने प्रवेश किया तो उनकी काया को बदल दिया, हम बच्चे भी अपनी काया को बदल रहे हैं, शिव बाबा हमारी काया को बदल रहा है। ये प्रैक्टिकल अनुभव करा के तुम शरीर नहीं बच्चे, तुम आत्मा हो, जब अपने आप को आत्मा समझते हैं तो आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, क्यों नहीं काम कर सकते है? और सुस्ती सब हट जाती है और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान क्या चीज देते हैं है? तन को स्वस्थ बना देते हैं, मन को स्वस्थ बना देते हैं, और धन इतना आपको देते हैं जो आपको किसी के आगे हाथ ऐसे नहीं करना पड़ेगा। अगर सच्चे आप ब्राह्मण हैं, जैसे हम सच्चे ब्राह्मण हैं, आप भी सच्चे हैं, या झूठा ब्राह्मण तो बैठ नहीं सकता यहाँ पे, सब सच्चे ही ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा के बच्चे माने सच्चे ब्राह्मण, झूठे ब्राह्मण तो वो है, तो ये चतुरी होती है यहाँ पे कि हमको हम सेवा करते हैं, हमें कोई कुछ दे जाए, नहीं, कितनी ऊंच धारणा बाबा ने सिखलाई है। दूसरी जगह जाएंगे तो ब्राह्मण एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको गाइड किया ना हमने, वो एक्सपेक्ट करते हैं, हम आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, जो आपने पूछा उसका प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका साथ दिया हमने, तो हमको कुछ मिलना चाहिए ना। तो यहाँ ऐसी बात है, सवाल ही नहीं, हमें भगवान इतना देता है जो हम भरपूर बन जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम कैसे दें, हमें भी चांस मिलना चाहिए दाता बनने का। तो जब बाबा की श्रीमत सुनते हैं तो हम सोचते हैं बाबा के घर में आए हैं, खजाना भर के जाए, और कोई भी मिले हमारे सामने आए तो उसको कुछ न कुछ दें, क्योंकि देने से खुशी होती है, यही ज्ञान का धन देने से बहुत खुशी होती है, ये प्रैक्टिकल बात है। एक डिप्टी कमिश्नर आया किसी सेंटर पे, उसको चीफ गेस्ट के रूप में एक प्रोग्राम में इन्वाइट किया था, लेकिन उस बेचारे को एड्रेस भूल गई कि कहाँ प्रोग्राम होना है, वो सेंटर पे पहुंच गया तो सेंटर पे एक बूढ़ी माता ने समझा भाई कोई नया आदमी है, उसको क्या पता ये चीफ गेस्ट है और प्रोग्राम में जाने के लिए आया, तो उसको सारे चित्रों पे समझाया, कितनी उमंग उसके अंदर। तो जो भोले भाले बच्चे हैं बाबा उन द्वारा भी कार्य करा सकता है, ऐसे नहीं कि जो टिपटाप है केवल उन्हीं का ही असर होगा, लेकिन उसमें क्या चाहिए? पवित्रता, निश्चय और बाप की का साथ चाहिए। अगर बाप को साथ रखेंगे आप, आपका एक एक काम जो है ना आपका सही होता जाएगा। हम तो देखिए शारीरिक रूप में मैं तो इतना काम नहीं कर सकता जितना पहले कर सकता था, सोचता हूँ कि सफर कम किया जाए तो अच्छा है, लेकिन इसी महीने के अंदर हम चौथी बार आ गए, मार्च के एंड में आए, फर्स्ट वीक अप्रैल में आए, सेकंड वीक में आए और अभी आए, चार बार दिल्ली जाना और आना, जाना और आना, आदमी थक जाता है, और तो बात छोड़ो। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं अभी का अनुभव बता रहा हूँ कि अपना प्रोग्राम, जैसे बड़ा व्यक्ति होता है क्या करता है, अपना प्रोग्राम जो उसकी सेवा पर हो उपस्थित उसको देता है, भाई मेरा प्रोग्राम ये है, फलाने टाइम मुझे जाना है, फलानी ट्रेन पकड़नी है, उसमें लिखा होता है, और वहां पहुंचना है, इतने दिन रहना है, उसके बाद हमने वापस चलना है और सेफ घर में आना है। बड़े आदमी, हम बड़े आदमी हैं, बाबा के बच्चे इतना तो अधिकार से कह सकते हैं कि हम बड़े हैं, कि हमारा बाप बहुत बड़ा है और हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो फिर अगर हम बड़े आदमी हैं तो हमारे विचार भी तो बड़े होने चाहिए, हमारा व्यवहार भी तो, दृष्टिकोण भी तो बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे बड़े बाबा ने हमको ये नशा चढ़ा दिया कि मैं तो तुमको बड़ा समझता हूँ, लेकिन अब तुमको रियलाइज करना है कि तुम अपने बड़े बाप के जो बच्चे हो अपने आप को बड़ा समझते हो या समझते हो कि मैं साधारण हूँ। अगर साधारण समझेंगे तो आपकी चलन भी साधारण होगी, बोलचाल भी साधारण होगा। जब हम इस नशे में रहते हैं, हम किसके बच्चे हैं, आपका सिर ऊंचा रहता है। नहीं तो भक्ति मार्ग में आंखें बंद सिर नीचा। कोई पंडित आया, कोई महात्मा आया, उसी के सामने झुक जाते। अभी हमको मालूम पड़ गया ये हमें क्या आशीर्वाद देगा, इस पास पावर ही नहीं है, शक्ति नहीं है उसके पास। हम बच्चों के पास बाबा की दी हुई पावर है, हम किसको भी जो चीज देना चाहें वरदान दे सकते हैं, किसी का भाग्य बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और जैसे आज मुरली में बताया है कि दूसरे को भी मर्जीवा बना सकते हैं, आपकी दृष्टि के अंदर इतनी कशिश हो जो दूसरा ये भूल जाए कि मैं इस शरीर में हूँ, अपने आप को पता नहीं कहाँ समझे। बाबा ने यही किया हमारे साथ, बाबा ने जो हमारे ऊपर जादू किया, दृष्टि का ही जादू किया, हमारे ऊपर दृष्टि डाल के अपना बना दिया। खो गए हम बाबा के प्यार में, प्यार में इतना खो गए बाबा के कि जब यहाँ से मधुबन से वापस जाते थे, पीछे जो भंडारा है उसी रास्ते से जाते थे, क्योंकि सड़क तो थी लेकिन सड़क वाला रास्ता लंबा पड़ता, पीछे से जाते थे और नीचे जो रास्ता जाता है वहां से थोड़ा ऊपर चढ़ के और जाते थे बस स्टैंड पर, वहां से बस में आते थे, गाड़ियां तो होती नहीं थी उस वक्त, हाँ पैदल आते थे बस स्टैंड से। बस स्टैंड अभी तो दूर है, लेकिन जहाँ होटल बने हुए हैं, जो मैदान है पैरेड ग्राउंड, उसके एंड में जहाँ टैक्सियां खड़ी हैं, तो वहां मैदान के अंदर बसें आके खड़ी होती थी और सामान ऊपर रखते थे जो कैरियर लगा हुआ बस में, और वहां से या तो अपने भाई उतारते थे खुद चढ़ के, पीछे सीढ़ी होती है बस के ऊपर, ऊपर चढ़ने के लिए जहाँ सामान रखा जाता है, तो एक भाई उतारता जाता है, दूसरा नीचे से पकड़ता जाता था, या आगे चल के थोड़ा सा उतारने के 10 पैसे देते थे एक सामान के उतारने के। तो वो समय था, हाँ बिल्कुल साधारण सिंपल लाइफ। अब तो हम दुनिया का रंग देख के, हमारे ऊपर रंग थोड़ा बहुत चलता है, चल रहा है, लेकिन एम ये रखनी है कि दुनिया का रंग न चढ़ जाए। ये रंग है झूठा, जब बाप को बुला देता है आपको तो हम तो रोएंगे, अगर बाप को भूल गए प्राप्त करने के बाद फिर से दुनिया के संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ गया तो हमारे जैसा बाबा कहते हैं कम वक्त कोई नहीं है। कम माने वक्त माने किस्मत, जिसकी किस्मत कम हो जाए तो हमारे जैसा कम वक्त कोई नहीं, बाबा ये शब्द बोलते साकार में अर्थ क्लियर करते थे, कम वक्त माने जिसका वक्त कम हो है? तो बाबा ने तो हमें हर एक चीज का अर्थ बतला दिया, ये भी बता दिया कि तुम्हारे जीवन कितनी वैल्यूबल है, एक एक श्वास तुम्हारा वैल्यूबल है। तो मैं ये बतला रहा था कि कैसे हम बाबा के पास आया करते थे हर साल में 2 या 3 बार, पूरा एक हफ्ता रहते थे यहाँ पे, एक दिन जाना एक दिन आना और 7 दिन रहना पूरे। फिर बाबा कहते थे गो सुन कम सुन, जल्दी जाओ, बच्चों को काम भी तो होगा, अगर बहने हैं तो सेंटर कौन संभालेगा, और बच्चे अगर बिजनेस करते हैं नौकरी करते हैं तो छुट्टी लेके आए होंगे, तो गो सुन कम सुन। बाबा ने हम बच्चों को ये टाइम की वैल्यू बता दी, लेकिन मैं ये बतला रहा था कि जब हम वापस जाते थे लौट के आते तो वहां से थे और देखते थे जहाँ बाबा की कुटिया है अभी, हाँ वहाँ थोड़ा सा घास वास होता था, तो ट्रेन पहुंचती थी 11, 11:30 बजे। अगर आप सर्दी के मौसम में आए तो हर एक व्यक्ति जो है कमरे के अंदर नहीं होता है, बाहर ही होता है, तो बाबा भी वहीं खड़े रहते थे। हम सोचते थे पहली बार जब आए कि ये बाबा जिसके बारे में हमें बताया गया पहले सेंटर पे यहाँ भेजने से पहले, कि ये बाबा ऐसा है जो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, आपको बहुत कशिश होगी, क्योंकि शिव बाबा इसके अंदर आते हैं। अब ये तो पता नहीं था कि शिव बाबा जब ब्रह्मतल में आते हैं कितनी कशिश होती है जब तक आप मिले नहीं उनको। तो बाबा हम बच्चों को देख लेते थे भाई ये बच्चा आ गया फलाना आ गया, पार्टी आनी थी 5 की 6 की इतने ही लोग आते थे एट ए टाइम, ऐसे नहीं कि 50 आ गए, नहीं इतने बच्चे थे नहीं, एक पार्टी में ज्यादा 4-5 आएंगे 6 आएंगे, टीचर एक साथ में आती थी क्योंकि पहली बार आए हैं तो टीचर को साथ आना पड़ता था बताने के लिए। और हम लोग चिट्ठी लिखते थे वहां से, टीचर चिट्ठी लिखती थी फलाना फलाना परिवार फलाने नाम वाला ये इतना समय से ज्ञान में चलते हैं, ये बाबा फलानी डेट को पहुंचेंगे। चलिए उस बाबा के पास जिसका साकार में निवास स्थान ये है, कहते ना भाई यहाँ की एड्रेस भगवान की एड्रेस कौन सी है, ऊपर तो चिट्ठी पहुंचेगी नहीं, इसलिए कहते हैं कि यहाँ आपकी एड्रेस जो है भगवान की एड्रेस है। तो मैं ये बतला रहा था जब हम जाते थे वापस यहाँ से एक हफ्ते के बाद, तो बाबा ये जो गेट है पीछे गेट होता था उससे बाहर निकल के एक बड़ा पेड़ है वहां तक आते थे सियाप करने के लिए, जैसे बच्चों को टाटा किया जाता है स्कूल जाते हैं या कहीं जाते हैं, इसी प्रकार से साकार में बाबा ने हमें प्रैक्टिकल कि मैं तुम्हारा बाप हूँ वैसा अनुभव कराया। बाप तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, दिखाने की बात नहीं है कि एक्टिंग करके दिखलाई, लेकिन है ही वास्तव में बाप। तो हम बच्चे बाबा से दृष्टि लेके जाते थे और बाबा हमें टोली देते थे माने विदाई की, उसमें बादाम और एक बादाम और थोड़ा चीनी, तो ये हाथ में हर एक बच्चे को टोली देते। और जाने से पहले बाबा से एक मुलाकात होती थी, एक आने पर होती थी, आने पर कि कौन कौन आए हैं, बाबा के पास पहले ही समाचार होता था तो बाबा समझ जाता था ये फलाना बच्चा ये है। तो बाबा जब भी मिलते, बच्चे पहुंच गए ठीक ठाक, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई और बाबा को पता है ठीक ठाक तो पहुंच ही गए, लेकिन फिर भी बाप का प्यार इसी में ही है कि बच्चे से पूछा जाए भाई ठीक ठाक पहुंच गए, अच्छा फिर बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे वो नहा धो के और फिर उसके बाद विश्राम करने के बाद ये भोजन पर सभी बच्चे भोजन खाएंगे। तो सारी जो इंस्ट्रक्शन है बाबा खुद देते थे बच्चों को, और जो हम लोग रहते थे यहाँ पर और कोई मकान नहीं था, यहीं पर जहाँ पर अपना बाबा का बना हुआ है शांति स्तंभ, तो वहां पर टेंट लगते थे और टेंट कोई छोटे लगते थे कोई बड़े, कोई तो मिलिट्री टाइप टेंट लगते थे जिसमें 4 बेड आ सके, कोई बड़े लगते थे उसके अंदर खटिया, खटिया माने चारपाई, कोई पलंग इस टाइप के नहीं जैसे आजकल कमरों में है ना, स्टील के होते थे लेकिन खटिया माने वो नवार वाली, उसके अंदर नवार लग, उसके ऊपर गदा बिछा हुआ, व्हाइट चादर बिछी हुई, तकिया व्हाइट जैसे अभी, और जैसी मौसम है चादर या कंबल, हर एक ऊपर सेट होता था। रहते थे शामियाने में लेकिन रहते ऐसे थे जैसे राजाओं के बच्चे रहते, इतनी सफाई। और बाबा ने प्रैक्टिकल बताया कि जो ब्राह्मण पवित्र रहते हैं उनका रहन सहन भी कैसा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि गंदे, आप कहीं पे भी चले जाइए होटल में अच्छे से अच्छे गेस्ट हाउस में चले जाइए इतनी सफाई नहीं मिलेगी जितनी बाबा के पास, आपको नहीं कह सकते उस बात की, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता रखते हैं, लेकिन उस समय बाबा के घर में कोई आ नहीं सकता था जब तक बाबा का बच्चा नहीं है, किसी को अलाउ नहीं किया जाता बाहर वाले को जब तक उसके पास पत्र नहीं है और टीचर ने उसको भेजा नहीं है तब तक। वहां से हम चलते थे, टेलीग्राम भेजते थे कि हम फलानी ट्रेन से निकल रहे हैं इतने लोग, ताकि इतने ही इतने बच्चों के रहने का इंतजाम भी किया जाए, भोजन का इंतजाम भी किया जाए, ऐसे तो नहीं अचानक आ जाए, अभी तो हजारों का भोजन बनता है, 50 ज्यादा आ गए तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर के अंदर कोई आता है मेहमान उसकी अच्छी तरह खातिर कर सके तो इतला पहले होता तो अच्छा होता। हाँ नहीं तो खाना बनेगा उस वक्त, और उस वक्त तो बनता था लकड़ी के ऊपर खाना, पानी गर्म होता था लकड़ी के ऊपर, उस बाद बॉयलर लगा, बॉयलर जो है उसके पता नहीं वो नीचे आग जलाते थे लेकिन पानी गर्म होके वो स्टोर होता था, स्टोरेज टैंक होता था। और धोबी घाट होता था, धोबी जो कपड़े जो धोते हैं वो वैसे ही साबुन में धो के, मशीन तो होती नहीं थी, वो उसके ऊपर थोड़ा सा उसको डंडे से वो करके सुखाते थे पहाड़ी के ऊपर, यही पहाड़ी के ऊपर सूखते थे, प्रेस नहीं करते थे कपड़े। प्रेस जो है पजामा कुर्ता को अच्छी तरह फोल्ड करके अपने तकिया के नीचे रख लो, बस बढ़िया प्रेस हो जाता है। तो वो टाइम था लेकिन देवमान नहीं था बच्चों में। अभी अगर ऐसे कपड़े पहनेंगे थोड़ा सा अभी तो सोचेंगे अरे हम अगर ऐसे पहनेंगे तो यहाँ के सेवादारी तो हमसे बढ़िया कपड़े पहनते हैं। आप लोग जो सेवा करने वाले जो यहाँ रहते हैं, मैं अपने मन से कह रहा हूँ कि हमसे बहुत अच्छे हैं, आपकी देखभाल बहुत अच्छी होती है। हमें तो कपड़े, खैर हम तो ब्राह्मण है, इतने पुराने बाबा के बच्चे और सच्चे ब्राह्मण है, हमें भी कपड़े खरीदने नहीं पड़ते, लेकिन कभी न कभी तो खरीदने पड़ते हैं जो कम है तो ऐसे लगते हैं, उसमें पता है हमें इसका क्या दाम है किस चीज का। यहाँ के रहने वालों उनको तो क्या पता कितना महंगा है, जो सिलाई करवाने जाओ वहाँ पे तो कितने 100 रुपये लगते हैं, हैं? एक पैंट और बुशर्ट को सिलाई करनी हो तो 200 रुपये से कम नहीं लगता एक सेट को, 200 रुपया बहुत चीज होती है, कमाना कोई आसान नहीं है। कोई ऐसे नहीं कि बाबा के बच्चे जो है बेईमानी से कमाते हैं, जो बाबा के बच्चे घरों में रहते हैं वो भी ईमानदारी से कमाते हैं, वो तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, उन पर इतना है जो अमीरों के पास भी नहीं, क्योंकि संतुष्ट जो आत्मा होती है वो अपना खर्चा करने के बाद फिर भी बाबा के पास जाने के लिए या कोई मेहमान आएगा उसको उसका खातिरी करने के लिए अपने पास रखती है, ऐसे बाबा के घर है। भले जो रहने वाले हैं दिल के बहुत बड़े और बाबा का भंडारा जो है हर जगह भरपूर रहता है, लेकिन हम ब्राह्मणों की ड्यूटी बनती है कि एक एक पाई की वैल्यू है। अगर कोई वेस्ट करता है उसके ऊपर खर्च चढ़ता है, बाबा ने बतलाया जैसे खाना वेस्ट नहीं कर सकते आप, एक कौड़ी वेस्ट नहीं कर सकते, बाबा ने इसलिए बतलाया साकार में बच्चे एक गरीब को दान देते हो बीड़ी पीता है उसका पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, उसी पैसे से वो बीड़ी पीता है, उसे शराब पीता है, हा? और गंदे कर्म करता है, जीवन ही कुछ नहीं है, तो आपका धन जो है उस काम में नहीं लग सकता है चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन भगवान क्या कहता है, यही लोग कहेंगे ना भाई ये दान नहीं देते, हा? और शुभ बोलने के बदले में बोलेंगे ये तो है ही ऐसे, ऐसे ही लोग बोलेंगे ना कि परवाह नहीं अपने को, हम लोग तो योगी बच्चे हैं, हमें क्या मान अपमान से क्या होगा, मेरे आपके कहने से ये बुरा है मुझे पता है मैं बुरा नहीं बन जाऊंगा, अगर आप मुझे अच्छा कहते हैं लेकिन मुझे पता है मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। हरेक को अपना अपना जो है ज्ञान का दर्पण बाबा ने दिया है, मुझे पता है कि मैं कितना पानी में हूँ, कहाँ तक सच्चा हूँ, कहाँ तक पवित्र हूँ, कहाँ तक धारणाएं हैं, कहाँ तक मैं बाबा को फॉलो करता हूँ, मैं खुद देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते मुझे, बाहरी रूप से देख सकते हैं लेकिन बाबा तो अंदर देखता है ना, आत्मा तो अंदर है। तो इसी प्रकार से मैं ये कह रहा था, तो जब हम जाते थे तो फिर लौट के पीछे देखते नहीं थे क्योंकि आंखों में आंसू होते थे, बाबा कहते थे गोश सुन कम सुन, लेकिन हमारा यहाँ जाने का दिल ही नहीं कहता था, लेकिन मजबूर है क्योंकि टिकट ली हुई है तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं है बगैर प्रोग्राम के रह जाएंगे, तो जहाँ आपके संबंधी हैं जो अकेला आया तो वो तो कहेंगे वो तो वहीं रह गए, ये वायदे के पक्के नहीं है। तो बाबा ने जो कुछ हम बच्चों को सिखलाया जैसे बड़े आदमी के बच्चे होने चाहिए वैसा ही सिखलाया, वैसा ही सिखला रहा अभी भी हम बच्चों में से जो यहाँ पर सेवा पर उपस्थित है या जो बाबा के साथ सच्चे है वो होनहार बहुत बड़े बड़े आदमी है, क्योंकि देवता तो होते ही बड़े बड़े से बड़े आदमी, उनसे बड़ा तो कोई होता ही नहीं है। तो अभी जो हम त्याग करते हैं तपस्या करते हैं उसका फल भी तो हमें मिलता है, खुशी होती है इस बात को देख के। दूसरा मैंने बताया जब हम आते थे वहां से तो बाबा में इधर आसपास ही मिलते थे आश्रम के, हा? बच्चे बाबा को हम देख के हम ऐसे टाटा करते थे, वेव करते थे, क्योंकि अभी आए हैं तो अभी तो कपड़े भी साफ स्वच्छ नहीं, कोई स्नान पानी भी नहीं किया दोपहर तक, तो व्यक्ति बाबा के पास जाए तो अच्छा तो नहीं लगता। तो इसलिए नहा धो के खाना वाना खाने के बाद फिर शाम को बाबा से मिलते थे 4 बजे बाबा के कमरे में, जहाँ बाबा के कमरे में हम योग लगाते हैं सवेरे, वहाँ पर जो बाबा का फोटो है उसके राइट हैंड साइड पे बाबा की खटिया पड़ी रहती थी, थोड़ी सी ऊंची, क्योंकि बाबा लंबे भी थे और ऊंचे भी थे, छोटी होगी खटिया तो बैठना भी तो मुश्किल होगा, है नहीं, तो खटिया थोड़ी ऊंची, और वैसे भी खटिया ऊंची होती थी पहले, अब तो जो सोफा है वो भी नीचे, तो मुश्किल होता है, कई जैसे बुजुर्ग होते हैं उनको बैठना मुश्किल होता है, उठना मुश्किल होता है, तो बड़े जो व्यक्ति हैं वो पहले जमाने के, उनकी आप कुर्सी भी देखेंगे इससे भी 1.5 गुना कुर्सी, क्यों, हर एक चीज दिल बड़ी, हर एक चीज बड़ी। अभी लोग मकान बनाते हैं वो 9 फुट 8.5 फुट की छत होनी चाहिए, पहले 14 फुट की छत होती थी अंग्रेजों के टाइम में, जो बनाते थे बेंच वगैरह इतने बड़े सोफा बनाते थे, तो बहुत बड़े, आप बड़े चर्च में जाकर देखिए, हमने अमेरिका में जाकर देखा, तो ये जो सोफा है इतना बैठने के लिए इतनी जगह है, पीछे आराम से बैठी, और जो बाजू है इसकी डबल बाजू, इसी चेयर की इतनी डबल, इतनी मोटी बाजू, आप उठा ही नहीं सकते उस सोफा को, इतने बड़े आदमी सोचते भी तो बड़ा है, अगर किसी ने लाल किला बनाया होगा तो उसका सोच कितना होगा, अगर हॉल बनाया होगा लाल किला के अंदर रहने के लिए कुछ भी बनाया होगा तो कितना बड़ा बनाया है। तो जैसे जैसे अभी कलयुग के समीप पहुंचते जा रहे हैं, हर एक चीज छोटी होती जा रही है, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते ईश्वर के अंदर कितने बड़े महल हो सकते हैं, सोचेंगे कि अरे इतने बड़े महलों क्या जरूरत है, लेकिन इतने बड़े आदमी सोचते ही बड़ा है, तो हर एक बात जो है अब छोटे से बड़ी होनी है, स्वर्ग भी तो बड़ा कहलाता ना, स्वर्ग को छोटा थोड़ी कहेंगे, स्वर्ग तो बहुत बहुत रॉयल दुनिया है, कभी कभी आंखों के सामने आ जाती है वो दुनिया, अगर बाबा की कही हुई बात को स्मृति में रखें, तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे मुक्ति धाम को भी याद करो, स्वर्ग को भी याद करो, अब कुछ ज्यादा दूर तो है नहीं, कितना दूर होगा, कितना समय पड़ा होगा, कोई कहेंगे 10 वर्ष 5 वर्ष 15 वर्ष मैक्सिमम, लेकिन विनाश होने में तो देरी लगती नहीं है, आदमी को मरने में देरी लगती है, अभी बैठा है और जो 2 मिनट के बाद शरीर छोड़ देता है, वैसे ही ये इस दुनिया को खत्म होना है, खत्म होने में क्या देरी लगेगी, बनने में थोड़ा टाइम लग सकता। तो बाबा ने दूसरी बात, जैसे बाप बच्चों की हर एक बात जानना चाहता है, पहली बार मिले हम बाबा से, कल पहले तो मिले थे, प्रश्न बाबा पूछते थे एक ही प्रश्न, बच्चे पहले कब मिले हो, बहुत बहुत से बच्चे फेल हो जाते उसमें, एक ही प्रश्न में फेल हो जाते, क्या नहीं बाबा पहली बार मिले, उत्तर उसका क्या है, हाँ बाबा मिले थे 5000 वर्ष पहले, नहीं मिले थे कल पहले, इतना निश्चय ज्ञान के ऊपर और सिमिट हो तो वो पास हो गया, तो बाबा तो हंसी में कह देते बच्चे टीचर ने तुमको पढ़ाया नहीं अच्छी तरह से, तो लेसन ही पक्का नहीं किया तूने, तो ये बात ड्रामा की कि कल पहले जो आए होंगे वही आएंगे, आएंगे जरूर, आप बुलाओ ना बुलाओ वो जरूर आएंगे, क्यों कल पहले आए थे, हर एक चीज तो फिक्स्ड है, तो बाबा ने हर एक चीज को वो एग्जाम्पल देख के समझाया। हम आए एक बार, पहली बार आए, हमारी मैरिज हुई, हम ज्ञान में चलते थे, हमारा सारा परिवार ज्ञान में चलता था, तो एक ज्ञान में चलने वाली कुमारी थी, उनके साथ मैरिज हुई, उनके माँ बाप चाहते थे भाई हमारे घर से तो चली जाए कम से कम, फिर जो चाहिए करे, वो बहन जी आई हुई है सुंदरी बहन, हो सकता है उनका क्लास रखेंगे तो वो सुना भी सकती है। तो फिर हम पहली बार मैरिज के बाद मधुबन आए, क्योंकि वो तो ज्ञान में चलती थी, मैं भी चलता था, पहली बार आए तो हम जब ओल्ड दिल्ली स्टेशन पे वो बाहर से एक फल का टोकरा लेने के लिए मैं गया, तो वहां पे टोकरा जो बनवाने में थोड़ी देरी हो गई, और फिर एक ही टोकरा था, हमने काम खुद ही उठा लेते हैं, तो जब हम पहुंचे प्लेटफॉर्म पे तो लास्ट वाला जो गार्ड का डिब्बा है ना वो आगे चल रहा है, मतलब ट्रेन चल भी पड़ी, आपकी घड़ी आगे पीछे भी हो सकती है, और ट्रेन तो टाइम पे जाती है, बहुत से लोग ट्रेन को मिस भी कर जाते हैं इसी कारण, समझते हैं अरे क्या है टाइम पे पहुंच गए, नहीं वो तो टाइम पे चल पड़ी, टाइम पे पहुंच जाने की बात नहीं, वो टाइम पे इंजन चल पड़ी वो, और ऐसे ऐसे पहले चलती है। अच्छा लेकिन हमारे साथ चौकड़ा था फल का, इसलिए हम चढ़ नहीं सके, पहुंच गए यहाँ पर वो बहन जी और उनके साथ और जो थे, तो बाबा को बोला लक्ष्मण भाई तो रह गया, बाबा ने बोला कोई बात नहीं बच्चे, नथिंग न्यू, कल पहले भी ऐसे हुआ था, आ जाएगा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसका मतलब या तो बाबा जानता ही है पहले, क्योंकि ज्ञान का सागर है पहले ही जानता है, और दूसरा वो ड्रामा को जानने कारण वो कहता है नथिंग न्यू है, तो नहीं बात नहीं। तो हम वापस गए वहां से स्टेशन से, फिर रात वाली ट्रेन में आए, किसी प्रकार से टिकट भी मिल जाती थी पहले, आजकल तो नहीं मिलती, फिर नेक्स्ट डे पहुंच गए। तो बाबा को पूरा निश्चय ड्रामा के ऊपर, किस बाबा को, बाबा का तो पता ही है, वो निश्चय तो है, निश्चय का सवाल नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को अच्छी तरह से पूरा निश्चय करा दिया, क्योंकि बाबा ने जो बताया उसको कि बाबा तो सच बतलाते हैं, बाबा हमें मिसगाइड तो नहीं करेंगे, दुनिया में तो मिसगाइड करते हैं, पूछो ये रास्ता कहाँ जाएगा तो कहेंगे नहीं ये इधर नहीं जाएगा ये जाएगा, उल्टा रास्ता बतला देते, पता न होने से बताना चाहिए भाई मुझे पता नहीं है, लोग कहेंगे हाँ ये जा रहा है, उसको पता भी नहीं है कि जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। लेकिन बाबा जो है बच्चे जो भी प्रश्न पूछते थे उसका सही उत्तर देते थे, ऐसे नहीं कि तड़का देना है, आजकल के माँ बाप तड़का देते, लेकिन वो बाप और माँ ऐसे न केवल हमारे बच्चों के ऊपर विश्वास और प्यार और अपनापन की जो बाबा ने फीलिंग हम बच्चों को दी, क्योंकि जब हम आते थे तो बाबा जब मिल आके हम बच्चों को मिलते थे एक एक को अलग, बाकी पहनते थे, आजकल अगर बड़े बच्चे को बाप बाकी पहने वो तो बच्चा मिलना ही नहीं चाहेगा उसको, कहेगा क्या हो गया मेरे बाप को, प्यार की निशानी क्या है। लेकिन आजकल दुनिया में इसको प्यार थोड़ी समझते हैं, वो समझते हैं माँ बाप से बच्चे दूर दूर रहते हैं, बाप को अच्छा लगता है माँ को कि बच्चा पास में बैठे, लेकिन बच्चा दूर बैठता है, क्योंकि पहले पवित्रता थी, आज से 100 वर्ष पहले भी लोग पवित्रता में विश्वास करते थे, जब गांधी जी का टाइम था तब भी उसने ऐसी मूवमेंट चलाई जो पवित्रता की वैल्यू लोगों को पता लगी, लेकिन अब तो सारा पानी फेर दिया उसके ऊपर, अब बाप आके कहते हैं जब सारे ही उसका फाउंडेशन खत्म हो जाता है मैं फिर से पवित्रता का फाउंडेशन लगाता हूँ। तो ऐसा हमारा बाबा जिसकी यहाँ बैठ के फिर से याद आती है कि सारे चित्र देखिए बाबा के, छोटे छोटे बच्चों को संभाला है बाबा ने, ये सब दादियां जो थी बहुत छोटी थी, आप देख ही रहे हैं कि कोई 8 वर्ष की, कोई 5 वर्ष की, कोई 13 वर्ष की, कोई 11 वर्ष की, तो 11 वर्ष क्या उम्र होती है, उनको संभालना आसान काम है, बहुत मुश्किल है, आप देख रहे हैं। लेकिन बाबा सूक्ष्म रूप में अव्यक्त रूप में फिर से अभी भी जो नए नए बच्चे आ रहे हैं उनकी पालना कर रहा है, साकार में तो देखा ही नहीं उन्होंने, लेकिन उनको ऐसे मालूम पड़ता है, ऐसे अनुभव होता है कि बाबा हमारे साथ है। हम केवल कहें कि बाबा हमारे साथ है, उनको अनुभव ना हो तो वो तो कहेंगे कि जो पीछे हम आए इसका मतलब आपने पहले वालों के साथ तो पार्शलिट की, हाँ उनके साथ तो उनका तरफ लिया, हम बच्चों का जो बाद में आए, तो छोटा बच्चा बाद में भी आए अगर तो भी उतना ही वर्षे का हकदार बनता है, अगर बच्चा 3 साल का एक एक 15 वर्ष का है तो जब हिस्से किए जाएंगे प्रॉपर्टी में तो उसको भी उतना ही देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि उसको तो 5 गुना मिलना चाहिए बड़े वाले को और उसको 1 हिस्सा मिलना चाहिए, ये नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मिक रूप में तो तुम सब बच्चे बड़े हो, बाबा अभी के तुम्हारे शारीरिक आयु को नहीं देखते, हमें भी यही धारणा करनी है, हाँ शरीर से कोई व्यक्ति बूढ़ा है, कोई बच्ची है या बच्चा है, कोई जवान है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप उसको बिरकुटी में ये आत्मा बैठी है, मेरा भाई है आपका और मेरा बाप दोनों का एक ही बाप है, अगर ये स्मृति आएगी तो आपका व्यवहार अपनेपन का होगा, बस यही प्रैक्टिस करना है। जो अपने आप को आत्मा समझता है उसको बाप की याद तो ऑटोमेटिकली है, क्योंकि बगैर आत्मा समझे बाप की याद तो ऐसे है जैसे भक्ति मार्ग में राम 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 करते रहो और राम की याद ही ना हो। तो भगवान की अगर शिक्षा याद है, उसकी सुनाई हुई श्रीमत के ऊपर आप चलते हैं, तो आप समझ लीजिए आप पास हैं। तो ये रोज अभ्यास करना है, मैं आत्मा भाई भाई हूँ, मैं तो करता हूँ। मजा भी बहुत आता है हर एक आत्मा से जिसको मैं ओम शांति कहता हूँ या आत्मा समझ के समझता हूँ मेरा भाई है। कहीं ड्यूटी पे खड़ा है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, किसने मुझे देखा, किसने नहीं देखा। जो जिन्होंने देखा उनके साथ तो परिचय है, जिनके साथ परिचय नहीं है उनको भी जब आप ओम शांति बोलते हैं तो वो सदैव याद करता है कि भाई ने मुझे पहचान लिया है, कि समझता है मैं उनका भाई हूँ। नहीं तो अगर यहाँ रहते हुए भी हम अपने देहाभिमान में अहंकार में रहते हैं तो आपको ईश्वरीय परिवार की फीलिंग नहीं आएगी। ईश्वरीय परिवार का सुख अगर लेना है तो ये देही अभिमानी अवश्य बनना है। देही अभिमानी बनना है, बाबा को याद करना है, और जो बाबा ने श्रीमत दिए जिसको हम ज्ञान कहते हैं उस ज्ञान को स्मृति में रखना है। जितना ज्ञान से भरपूर रहेंगे उतना आप खुश बन जाएंगे, खुश नसीब हो जाएंगे। हम तो खुश नसीब हैं, ऐसे नहीं कि उलझन नहीं आती, परीक्षा नहीं होती, हर एक कदम कदम पे माया खड़ी है, लेकिन बाप हमारे साथ है, हमारा क्या करेगी माया। यही बात भूल जाते हैं कि माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। अगर ये याद रखें कि माया का काम है आना और बाबा हमारे साथ होने के कारण माया हमारा कुछ नहीं कर सकती, इससे हिम्मत बढ़ती है। अगर आप हिम्मत से चलते हैं, बाबा की याद में रहते हैं और स्वमान में है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, कम नहीं हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, आप मेरा तिरस्कार करो कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा तो मेरा सत्कार करता है, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं बाबा का सत्कार करता हूँ, मैं बाबा के साथ वफादार हूँ, तो बाबा मुझे प्यार करता है। तो जब बाबा का प्यार, ये संकल्प आता है कि भगवान बाप हमको मिला है, तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि अंदर जूम उठता है और आपकी आंखें बाप से मिलकर गीली हो जाती। ऐसा हमारा बाबा है, कम बात नहीं है, भगवान हमारा बाबा है। लोग समझते हैं बाबा बाबा कहते होंगे ब्रह्मा बाबा को, सही बात है, ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं क्योंकि दोनों ही हमारे बाप हैं, लेकिन ये ब्रह्मा बाबा की वैल्यू शिव बाबा इसमें प्रवेश करता है, इस कारण है। इसलिए जब हम मिलते हैं या अव्यक्त रूप में मिलते हैं तो या तो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का शरीर होगा या साकार ब्रह्मा बाबा का शरीर होगा, निराकार शिव बाबा से मिलना संभव नहीं है। वो तो सन्यासी लोग भी याद करते हैं, हम ब्रह्म अस्मि, हम आत्मा स्व परमात्मा है, हम आत्मा स्व परमात्मा के बच्चे हैं, ये तो हम भी याद करते हैं, लेकिन कौन से बाप के बच्चे हैं, वो निराकार बाप जो ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो ऐसे भगवान बाप हमारे साथ हैं, कभी भूलेंगे नहीं उसको, क्योंकि बाप भूल सकता है, जिस बच्चे को जन्म दिया है बाबा ने वो भूल सकता है, हमें नया जन्म दिया, पुराना जन्म तो खत्म, पुराने जन्म की तो कोई बात बताई नहीं हमने, किसका मतलब वो तो पीछे चला गया, भूल गए हम पुराने जन्म की, अभी जब से बाबा के बने तब से ही बातें हमको याद है, पुरानी तो दुख देने वाली बातें है, पहले था ही नहीं कुछ, सुख नहीं था, खुशी नहीं थी, आत्मा जो है प्यासी थी, भटकती थी, रास्ता ही पता नहीं था, जाना कहाँ पर है, जीवन का क्या लक्ष्य है, कुछ पता नहीं था, अब तो पता है। इसलिए हर एक को बाबा लाइट देकर, सर्च लाइट देकर उसको अपना रास्ता दिखाता जाता। ओम शांति। आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा सौभाग्य है अपने भाई बहनों से, अपने परिवार से मिल पाया, क्योंकि देखते तो आपको है ही, ऐसे तो है ही नहीं, ईश्वरी परिवार में अनेक आत्माओं को हम देखते हैं साकार में, लेकिन समीप बैठना और एक दूसरे को देख पाना उसी दृष्टि से और वृत्ति से कि हमारा ही परिवार है और हमारे परिवार के, हम आपके परिवार के, अरे इस समय लौकिक में नहीं ईश्वरी परिवार के तो है ही, लेकिन अगले जन्म से लेकर कोई न कोई संबंध में तो हमें आना ही है।
तो बाबा की जो शिक्षा है बहुत ऊंची है, उसको उस ऊंचाई को जानने के लिए समझने के लिए भी थोड़ा सा बुद्धि का विचार सागर मंथन करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। और विचार सागर मंथन करने से क्या होता है, फालतू बातें चली जाती हैं। विचार सागर मंथन नहीं करते, बाबा की बात जो सुनाते हैं उसको अगर याद नहीं रखते तो अपना बहुत घाटा करते हैं, क्योंकि सारा दिन तो और बातें मन के अंदर चलती हैं, बाबा ने जो बताया वो सब कुछ भूल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे भी याद करो, जो मैं कहता हूँ उसको भी याद करो, और तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको भी याद रखो कि एक ब्रह्मा कुमार का क्या लक्ष्य होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तो बहुत महिमा निकलनी है, क्योंकि बाबा कहते हैं जब तुम बाप समान बन जाओगे तो सारी दुनिया के अंदर जय जयकार होनी है। किसको देखकर? हम बच्चों को देखकर। तब कहेंगे हमने बाबा को प्रत्यक्ष किया। ओम शांति।